मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, 4 दिनों के बाद मुझे आप सबसे फिर से मुलाकात करने का अवसर मिल रहा है और इन 4 दिनों के बीच आप सभी ने जो भी पर्व त्यौहार उत्सव आए उन सब का भरपूर आनंद उठाया होगा। और इसमें जो अंतिम त्यौहार था वह था हनुमान जयंती का। तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जयंती के केंद्र में जो हनुमान जी हैं इनको लेकर के कुछ आप सबसे बातचीत की जाए। और ये जो मेरी बातचीत होगी इसका संबंध कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक ऊर्जा से भी है जिसकी चर्चा मैंने पिछले बुधवार को की थी, आपको शायद ध्यान होगा। और उसके केंद्र में जो कथा थी, या यूं कह लीजिए कि जो घटना थी, वह यह थी कि किस तरीके से अमेरिका में रहने वाले, वहीं बस जाने वाले एक भारतीय नौजवान ने अपने पिता के कक्ष को उपासना स्थल में तब्दील करके और वहां से रोजाना आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तो आइए हनुमान जी के माध्यम से इसे थोड़ा सा देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक प्रसंग आपके सामने रखूंगा, या यूं कह लीजिए कि एक स्थिति आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जब आप इस स्थिति पर विचार करेंगे तो शायद जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं उसे आप बहुत अच्छे तरीके से हृदयंगम कर सके, आत्मसात कर सके। मान लीजिए कि शाम का समय है, सूरज डूबने को ही है और आप एक राजमहल में पहुंच जाते हैं। और ऐसा ये राजमहल है जो लगभग लगभग खंडहर हो चुका है, लेकिन आपकी बहुत रुचि है इस तरह के खंडहरों में घूमने की। अभी सूरज निकला हुआ है और आप राजमहल में अकेले घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ दीवारें टूटी हुई हैं और यहाँ दरवाजे गिर गए हैं और यहाँ जाले लगे हुए हैं और यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। जगह जगह आप अलग अलग तरह के दृश्य देख रहे हैं और उन खंडहरों को आप महसूस कर रहे हैं कि किसी दौर में सच में इस राजमहल की स्थिति क्या रही होगी। और आपको आनंद आ रहा है, आप जो घूम रहे हैं, धीरे 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 सूरज डूब रहा है, सूरज डूब गया है और अंधेरा फैलना शुरू होता है, राइट? अब अंधेरा हो गया है, अब आप राजमहल में ही हैं और अचानक आपको कुछ फड़फड़ाने की आवाज आती है, जैसे कि कुछ उड़ा। तो जैसे ही आपको यह आवाज सुनाई देती है आपके अंदर किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है, सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसा लगता है। फड़फड़ाहट की आवाज के साथ ही चरचराहट की आवाज आती है, चरमराहट की आवाज सुनते ही आप रोमांचित हो जाते हैं और एकदम चौंक पड़ते हैं कि अरे यह क्या है। मान लीजिए कि कहीं कोई पत्थर लुढ़क गया या कोई आपका पैर ही किसी पत्ते के ऊपर पड़ गया, टकरा गया, तो आप किस तरह का महसूस करने लगते हैं, बस इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। भले ही आपका अनुभव इसके बारे में न हो लेकिन फिर भी आप कल्पना तो कर ही सकते हैं। जब सूरज की रोशनी थी तो आप देखिए कि आपको तब भी इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, तब भी यह सब कुछ हो रहा था। तब भी आपको जाले दिखाई दे रहे थे, चमगादड़ उड़ रहे थे, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आप खोए हुए थे राजमहल के आनंद में, आप डूबे हुए थे, काल्पनिक सैर आप उस राजमहल का कर रहे थे। लेकिन अब आपको डर लगने लगा है, जैसे ही आपको फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई देती है या चरमराहट की आवाज सुनाई लग देती है या आपका पैर किसी पत्ते पर पड़ जाता है या आप कहीं टकरा जाते हैं तो आप एकदम से डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या होगा, पता नहीं क्या है। तो ये जो डर है इस पर आप विचार कीजिए कि ये डर आया कहां से है, क्या हो गया। अभी तक तो आप नहीं डर रहे थे, अभी तक तो आप आनंद ले रहे थे, तो अब अचानक क्या हो गया कि आप डरने लगे, आपका जो आनंद है वो डर में तब्दील हो गया। एक बात तो जरूर नहीं हुई है और वो ये कि अब सूरज आपके साथ नहीं है, इससे पहले सूरज आपके साथ था और उस सूरज की रोशनी इस पूरे राजमहल पर पसरी हुई थी, भरी हुई थी। अब वह सूरज गायब हो गया है, उसके साथ उसकी रोशनी भी गायब हो गई है और राजमहल के अंदर अब अंधेरे की चादर फैल गई है। अब आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। जब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं तब क्या हो रहा है, अब क्या सोच रहे हैं आप? जब चमगादड़ उड़ता है तो आपको लगता है कि अरे कोई भूत न प्रेत न उड़ रहा हो। जब आप किसी से टकराते हैं तो आपको लगता है कि अरे किसी आत्मा से आप न टकरा गए हो। यह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से मौजूद है, तो ये तो दिन में भी मौजूद था, तो अब क्या हो गया? अब एक ही घटना हुई है और वो ये कि राजमहल अंधेरे में डूब गया है और अंधेरे में डूब जाने के कारण अब आपको वस्तुओं का ज्ञान ठीक से नहीं हो पा रहा है। पहले जब चमगादड़ उड़ता था तो आपको दिखाई देता था कि चमगादड़ उड़ रहा है, आप उसे पहचान लेते थे, उसकी वास्तविकता का अनुभव आपको हो जाता था। और जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, तो हमारा भय दूर हो जाता है। अब वह नहीं हो रहा है, यानी कि यह जो अंधकार है यह हमारी अज्ञानता का कारण बन गया है। हम चीजों को साफ तौर पर देख नहीं पा रहे हैं, चीजों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और जब पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उससे भयभीत हो रहे हैं। यही एक कारण मुझे मालूम पड़ता है, आप अपने बारे में सोच करके देखिए। तो दोस्तों, हनुमान जी क्या है, बस आप यहां बस आखिरी में बस एक बात मैं कहने जा रहा हूं। तो हनुमान जी क्या है, हनुमान जी के ऊपर आप विचार करके देखिए कि दरअसल ये हैं क्या। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शुरू की चार पंक्तियों के बाद जब हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है तो उसकी जो पहली लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जब शुरू शुरू ही हम करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता हमें मालूम पड़ती है, जिन शब्दों का उल्लेख करके हम उनकी सबसे बड़ी प्रशंसा कर सकते हैं, शुरुआत में तो हम वही बात कहेंगे। तो क्या हनुमान जी का जो सबसे बड़ा जो गुण है, या कह लीजिए सबसे बड़ी जो शक्ति है, सबसे बड़ी जो क्षमता है, या उनके लिए जो हम सबसे बड़े प्रशंसा के जो शब्द कह सकते हैं, यही है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए यहां दोनों हैं, केवल ज्ञान नहीं, केवल गुण नहीं, ज्ञान और गुण के आप सागर हैं। ये दोनों चीजें आपके पास हैं, ये दोनों वर्च्यू आपके पास हैं, ज्ञान और गुण। हनुमान जी किसके देवता हैं? हम हनुमान हमें अभय करते हैं, हमें निडर बनाते हैं। जब हनुमान जी आ जाते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, केवल नाम नाम ले देने मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, चले जाते हैं। तो ये हैं हनुमान जी क्या? अगर इन्हें आप सच में ज्ञान और गुण का सागर मान रहे हैं, इसका मतलब है कि जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है और जब हमारे पास गुण आ जाता है तो भूत पिशाच वगैरह कुछ भी हमारे निकट नहीं आते, सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ज्ञान का प्रकाश हो गया है। दोस्तों, इसे आप अब शुरू में मैंने जो राजमहल की यात्रा आपको कराई थी उस पर अप्लाई कर दीजिए कि जब ज्ञान का प्रकाश हमारे पास होता है तो हमें कोई चीज डरा नहीं सकती, हम हर चीज का जो उपयोग है बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, हर वस्तु हर घटना के बारे में हमारे जो निर्णय होते हैं वो बहुत ठोस होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे लगता है कि यही हनुमान है, ज्ञान और गुण के सागर। देखिए, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो रावण के पास भी बहुत था, लेकिन दुर्भाग्यवश गुणों का उसके पास अभाव था। तो केवल ज्ञान की वजह से ही हम महान या बड़े काम नहीं कर सकते, या यूं कह लीजिए कि एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते तब तक जब तक कि उसमें गुण का समावेश न हो। ज्ञान और गुण की जुगलबंदी ही सही मायने में हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करती है। तो दोस्तों, मेरी इन सब बातों पर आप सब थोड़ा थोड़ा विचार करें, और मुझे लगता है कि हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि कैसे हम अपने अंदर के जो अज्ञान के अंधकार का जो बिल्कुल प्रवाह फैला हुआ है उससे मुक्त कर सकें। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।